ఓం శాంతి. ఓం శాంతి. ఓం శాంతి. ఆజ్ హమ్ సబ్ బహన్ భాయి దేశ్ కే ఔర్ విదేశ్ కే కోనే కోనే సే ఇస్ డైమండ్ హాల్ మే ఔర్ డైమండ్ యుగ్ మే ఏకత్రిత్ హువే హై. ఆజ్ కా హమారా జో బాత్చీత్ కా టాపిక్ హై ఉస్కా కనెక్షన్ భీ సంగమ్ యుగ్ యా డైమండ్ యుగ్ సే హై. క్యూకి జో మర్యాదాయే సత్యుగ్ మే థీ, ఆప్ జానతే హై కి సత్యుగ్ సే లేకర్ త్రేతా కే అంత తక్ సబ్ చీజ్ మర్యాదా యుక్త రహతీ హై. ఇసిలియే త్రేతా కే శ్రీ రామ్ కో భీ మర్యాదా పురుషోత్తమ్ కహా జాతా హై. ఔర్ వో మర్యాదా జబ్ రహతీ హై తో హర్ చీజ్ మర్యాదా మే రహతీ హై. ప్రకృతి భీ మర్యాదా మే రహతీ హై. హమ్ సబ్ జానతే హై, ఆప్ తీసరీ ఆంఖ్ ఖోల్ కర్ దేఖ్ సక్తే హై కి ప్రకృతి వహాన్ పర్ సుఖ్ దేనే వాలీ హోతీ హై, సేవా కర్నే వాలీ హోతీ హై. బర్సాత్ హోతీ హై లేకిన్ మూసలాధార బరసాత్ నహీ హోతీ. మౌసమ్ బదల్తే హై లేకిన్ కోయి మౌసమ్ తంగ్ నహీ కర్తా. ఐసా నహీ కి గర్మీ మే ఆప్కో బహుత్ పసీనా ఆయే ఔర్ సర్దీ మే ఆప్ థర్ థర్ కాంప్ రహే హో, ఐసా నహీ హై. హర్ చీజ్ ఔర్ కోయి భీ ఐసా దృశ్య నహీ హోతా జో ప్రియ నా హో. హర్ సీన్ హర్ చీజ్ ఖుషీ దేనే వాలీ హోతీ హై. వో మర్యాదాఓ కి దునియా ధీరే 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 జైసే ఏక్ వ్యక్తి శరీర సే ధీరే ధీరే బచ్చే సే జవాన్ హోతా హై ఫిర్ ధీరే ధీరే వృద్ధ హోతా హై, ఇసీ ప్రకార సే కల్యుగ్ కే అంత తక్ ఆకర్ సారీ మర్యాదాయే లగ్భగ్ ఖతమ్ హో జాతీ హై. హర్ చీజ్ హోతీ హై లేకిన్ బే టైమ్ హోతీ హై, యా ఉస్కా టైమ్ గలత్ హోతా హై, యా ఉస్కా స్థాన్ గలత్ హోతా హై ఔర్ యా ఉస్కో కర్నే కా ఢంగ్ గలత్ హోతా హై. తో ఉస్కా భీ పరిణామ్ హమ్నే దేఖా హై కి ఆజ్ జో హై ప్రకృతి హమారే సామ్నే ఖడీ హో గయీ హై. హమ్ మాయా జీత్ థే, ये जिसको हम विकार कहते हैं बिगड़ा हुआ रूप गुणों का, वो हमारे सेवाधारी थे. आज वो भी अपने पांच फन निकाल करके खड़े हैं. तो उसके बाद बाबा कहते हैं टोटल अमर्यादा की दुनिया से, टोटल मर्यादा की दुनिया कब आती है और कैसे तैयार होती है, कौन तैयार करता है, ये हम जानते हैं. तो संगम युग डायमंड एज जिसको कहते हैं वो ऐसा युग है, यहां पर हर अमर्यादित चीज मर्यादा में आ जाती है और उसको मर्यादा में लाने के लिए जो परमपिता परमात्मा जो सदा ही मर्यादाओं को ठीक करवाते हैं वो आकर के हमें गाइड करते हैं. और जब बाबा के बच्चे मर्यादा में आ जाते हैं तो अपने आप सारी दुनिया प्रकृति भी मर्यादा में आ जाती है, जानवर भी मर्यादा में आ जाते हैं, फल फूल भी मर्यादा में आ जाते हैं और मनुष्य आत्माएं तो आ ही जाती हैं. तो इसलिए इस युग को कहा जाता है चढ़ती कला का युग. और जितने भी युग हैं, चाहे स्वर्ग ही क्यों ना हो, वो चढ़ती कला के नहीं है। तो इसलिए इस युग पर जबकि स्वयं परमात्मा टेढ़े बांकों को सीधा कर रहा है और बिना मेहनत के, और उसकी गारंटी है कि हर एक को मैंने मर्यादा सिखाई देनी है, ऐसे युग पर बाबा के डायमंड युग में और डायमंड हाल में डायमंड बन रहे बच्चे जो हैं इकट्ठे हुए हैं, तो आप सोचो कि हम कितने 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 भाग्यशाली हैं। सारी दुनिया अमर्यादा में है, हम मर्यादा सीख रहे हैं। इसलिए अपने लिए खुशी से हम कहाँ बैठे हैं, कौन हमें बना रहा है, तो खुश होकर के जितनी जोरदार ताली आप बजा सकते हैं उतनी बजाएं। अब आप देखिए कि ये जो मर्यादाओं को दोबारा से लाने का युग है, इसमें हम शुरू कैसे हुए? तो बाबा कहते हैं कि ये है छोटा सा युग, लेकिन इसमें एक जन्म का नहीं, 21 जन्म का हमारा, 21 जन्म भी नहीं बल्कि 21 पीढ़ी का हमारा उत्थान होता है। तो कोई छोटी मोटी बात नहीं है। दुनिया में लोग एक जन्म के 20-25 साल उस जन्म को ऊंचा बनाने के लिए वेस्ट करते हैं, और यहाँ बाबा कहते हैं थोड़े से युग में जब भी हम ज्ञान में आए, कई भाई बहन तो इस वक्त भी पहली बार आए होंगे इस डायमंड हॉल में। कौन कौन भाई बहन पहली बार आए, जरा हाथ उठाइए। अब देखो 60-70% तो पहली बार आए। तो बाबा कहता थोड़ा सा समय है, उसमें कितनी बड़ी, एक तो 21 जन्मों की प्राप्ति है मर्यादाओं को फॉलो करने से। दूसरे बाबा कहते हैं और जगह पर सेकंड चांस मिलता है कि चलो कोई फेल हो गया, दूसरी बारी कर ले, किसी की नौकरी नहीं लगी, दूसरी जगह चला जाए। लेकिन ये जो चांस है, ये हमारे कल्प कल्पांतर की बाजी है। तो एक तो 21 जन्मों पूरे दो युग की, और दूसरे कल्प कल्पांतर की बाजी है। तो आप सोच सकते हैं कि और भी कितना महत्वपूर्ण ये डायमंड एज है, इसीलिए इसको डायमंड एज कहा जाता है। अब बाबा कहते हैं हमने पहला जब हम बाबा की गोद में आए, अर्थात पुरानी दुनिया से मरे और नई दुनिया में जन्म लिया, वो हमारा जन्म जो है वो कोई शारीरिक नहीं है। अगर आप अपने जन्मों को गिनती करेंगे तो 83 बनते हैं 83, और 84वां अलौकिक है, जो इसी शरीर के अंदर हमने मर जीवा जन्म लिया। इसलिए वो जन्म जो है शारीरिक तो है नहीं, ना शारीरिक माता पिता ने दिया है, तो वो अलौकिक जन्म है और अलौकिक माता पिता ने हमको दिया है। तो उसकी दो बातें हैं, एक तो वो अलौकिक है और दूसरा वो रूहानी है, जिस्मानी नहीं है। तो इसलिए ये दो चीजें हमारी पहली मर्यादा है कि जिसको जन्म घुट्टी कहते हैं ना, जन्म मिलते ही कि हमारा ये जन्म अलौकिक है और हमारा ये जन्म रूहानी है। वहां से हम मर गए और यहाँ पे जन्म ले लिया। तब पुरानी दुनिया की तरफ हमारा क्या हो गया, पीठ हो गई। अगर हमने इस पार से उस पार जाना है तो जिस पार से पीठ करी है वहां तो पीठ हो गई ना, इसलिए इसको कहते हैं मर्यादा। यानी ऐसा पहली मर्यादा क्या है कि जिस घर को छोड़ा, उस घर की तरफ पीठ हो गई, हम मर गए वहां से। शारीरिक तौर पे नहीं मरे क्योंकि अलौकिक है, लेकिन रूहानी तौर पे अब हमारा मुंह उधर हो गया। दूसरा काम क्या हुआ, हम सबको नया नाम मिल गया, क्योंकि जब कोई व्यक्ति नए घर में जन्म लेता है उसको नया नाम मिल गया। क्योंकि हमारा जन्म अलौकिक है तो उस माता पिता का नाम हमको मिल गया। तो हम सब का कॉमन नाम क्या है, आप सब जानते हैं, हम सब का कॉमन नाम क्या है, ब्रह्मा कुमार और ब्रह्मा कुमारी, तो कॉमन नाम हो गया, तो हम एक ही परिवार के हो गए। जैसे नई बिरादरी पैदा होती है तो ब्राह्मण बिरादरी में हम आ गए। इसलिए अब हमारी बाकी सारी कल्चर जो है पुरानी दुनिया की, कि ये मद्रासी है, ये बंगाली है, ये लंदन का रहने वाला है, वो सारी खत्म हो गई। तो हमारी एक मर्यादा और एक कल्चर कौन सी हो गई, ब्राह्मण कल्चर। अब हमें उस ब्राह्मण कल्चर की मर्यादाएं पालन करनी है, क्योंकि वहां से तो हमारा जन्म खत्म हो गया। तो पुरानी दुनिया में जो चीजें थी वो दुख देने वाली थी, ऐसे नहीं कि वस्तुएं दुख देने वाली थी या व्यक्ति दुख देने वाले थे, लेकिन उसके अंदर कुछ गड़बड़ थी जो दुख दे रही थी। घर तो सतयुग में भी होता है, महल होता है, परिवार तो सतयुग में भी होता है, हर चीज होती है, पशु भी सतयुग में होते हैं, लेकिन दुख देने वाला कोई नहीं होता। इसलिए बाबा कहते हैं जो चीज दुख देने वाली है उससे मैंने आपको बेहद का विराग दिलवा दिया। अब हम हो गए बीके। अब बीके की कल्चर क्या है, वैसे तो हम उसका पालन कर रहे हैं, लेकिन उस मर्यादा को रिवाइज किया जाए तो बीके की कल्चर में ब्रह्मा बाबा, जिस चीज के साथ ब्रह्मा बाबा लगता है वो हमारी कल्चर है। तो उसका यादगार भक्ति मार्ग में जन्म जन्मांतर से चला आता है, लेकिन उसका रूप बदला हुआ है, उसका मतलब भी बदला हुआ है। तो पहली बात क्या है कि जो ब्रह्मा कुमार कुमारी हैं उनका जो आचरण है उसका नाम है ब्रह्मा आचरण। जो हम ब्रह्मा बाबा को फॉलो करते हैं, जैसे ब्रह्मा बाबा ने सरेंडर किया, ब्रह्मा बाबा ने शिव बाबा का ही ध्यान रखा, ब्रह्मा बाबा ने दूसरों की जोत जगाई, जो भी किया तो उसको उन्होंने नाम दे दिया ब्रह्मचर्य। अब ब्रह्मचर्य वो प्योरिटी को कहते हैं, निर्विकारता को कहते हैं, लेकिन ब्रह्मचर्य तो एक बात है। बाबा ताजी मुरलियों में भी कह रहे हैं कि अगर कोई इस जन्म में ब्रह्मचर्य का पालन कर भी ले वो सतयुग में नहीं जा सकता, क्योंकि उसके पिछले जन्मों के विकर्म विनाश हो ही नहीं सकते। इस जन्म तो थोड़ा सा है, वो जो इतने 63 जन्मों के विकर्म हैं वो कैसे दगत होंगे। इसलिए उसके लिए फिर बाबा ने और तरीके योग बताया हुआ है, याद बताया हुआ है। तो ब्रह्मा आचरण पूरा, जो कुछ ब्रह्मा बाबा ने किया उसको फॉलो करना बीके की मर्यादा है। दूसरी बात, एक और नाम भक्ति मार्ग में चला आता है जिसको वो ब्रह्म ज्ञान कहते हैं। अब ब्रह्म ज्ञान जो है कौन सा ज्ञान, ब्रह्मा बाबा के द्वारा शिव बाबा का दिया हुआ ज्ञान। तो ब्रह्मा ज्ञान यानी ब्रह्मा के माध्यम से दिया हुआ शिव बाबा का ज्ञान, या सरस्वती के माध्यम से दिया हुआ शिव बाबा का ज्ञान जिसको वो मुरली कहते हैं या वीणा कहते हैं, उस ज्ञान की जगह उन्होंने ब्रह्म ज्ञान कर दिया। अब आपको पता है दुनिया में कई लोग हैं जो ब्रह्म ज्ञानी कहलाते हैं, और उनका ज्ञान क्या है ज्यादा डिटेल ना कहें, सब जगह ब्रह्म ही ब्रह्म है, तो बेचारे इसी ब्रह्म के अंदर लाइफ बिता रहे हैं। अच्छा, तो एक तो हो गया ब्रह्मा आचरण, दूसरा हो गया ब्रह्मा जी के द्वारा दिया हुआ ज्ञान, तीसरा एक और चीज प्रसिद्ध है जिसको कहते हैं ब्रह्म मुहूर्त। आपने सुना होगा ब्रह्म मुहूर्त के समय को सारे दिन में सबसे ज्यादा ऑस्पिशियस यानी शुभ गिना जाता है। तो दुनिया के लोग भी, भगत लोग जो हैं, वो ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं, भक्ति करते हैं, और कोई तपस्वी है, सन्यासी है, वो भी ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं और गाते हैं, उठ जाग मुसाफर भोर भई, रैन कहाँ जो सोवत है। तो वो जो ब्रह्म मुहूर्त है, वास्तव में वो ब्रह्मा जी के द्वारा निकाला हुआ मुहूर्त है। आपको पता है कि आज भी दुनिया में लोग मुहूर्त निकलवाने जाते हैं तो ब्राह्मणों के पास जाते हैं, असली ब्राह्मण नहीं है तो नकली के पास जाते हैं, और असली से तब पूछते हैं जब कोई अर्थक्वेक आ जाए, कहीं बम फट जाए, आपके पास आएंगे पड़ोसी, आपका बाबा क्या कहता है, उस वक्त आएंगे। इसका मतलब उनको दिल में पता है कि असली जन्म पत्री दुनिया की बाबा के बच्चों के पास है। इसलिए एक तो दुनिया का क्या हुआ, एक तो सारे दुनिया का ब्रह्म मुहूर्त है और एक हर दिन का ब्रह्म मुहूर्त है। तो बाबा कहते हैं जिस दिन शिव बाबा अवतरित हो गए तो दुनिया का तो ब्रह्म मुहूर्त हो गया है, क्योंकि दुनिया का संगम युग आ गया और चारे युगों में संगम युग ही ब्रह्म मुहूर्त है, क्योंकि इसके अंदर ब्रह्मा बाबा के द्वारा बाबा सबका कल्याण कर देते हैं, जो नहीं भी करवाना चाहता उसका भी कर देते हैं। और दिन का ब्रह्म मुहूर्त अमृत वेला, अर्थात उस वक्त ज्ञान अमृत बाबा बरसाते हैं। तो कहते हैं ब्राह्मण की सबसे बड़ी मर्यादा क्या है, जो ब्रह्म मुहूर्त में आके बाबा के याद में बैठ जाए वो ब्राह्मण, जो जरा देर से बैठे उसको क्या कहते हैं, बाबा का बच्चा तो है उसको क्षत्रिय कह देते हैं, बेचारा युद्ध करके एक बार नींद याद आती है, इस तरह बाबा याद आता है, फिर नींद याद आती है, फिर बाबा याद आता है। तो आपको पता ही है कि क्या होता है कि सारा दिन चुस्त रहेंगे, जब अमृत वेला आएगा तो ऐसे लगेगा जैसे सारी हड्डियां शरीर की किसी ने तोड़ दी हैं, इतनी थकावट है कि बस बिस्तरा ही उनको अच्छा लगता है। और जब अमृत वेले का टाइम पूरा हो जाएगा, बड़े एक्टिव हो जाएंगे फटाफट, बाबा कहता उनको यही सजा है कि वो अमृत वेला मिस कर देते हैं, और उसके बाद सारा दिन चिड़चिड़े रहते हैं, क्योंकि उनको अंदर से पता है कि दूसरों ने तो अमृत वेला कर लिया, वो तो आगे चले गए, हम पीछे रह गए। तो अंदर उनके रहता है, लेट कर उनको कुछ फायदा नहीं होता, लेकिन जो पहला लॉ था कि हम रूहानियत में हैं, हम आत्मा हैं, हम अलौकिक हैं, तो एक मर्यादा को तोड़ेंगे तो दूसरी भी टूट जाएगी, तो बॉडी कॉन्शियस हो जाएंगे। तो बॉडी कॉन्शियस होने से वो फिर अमृत वेला मिस करवाता, तो दूसरा हो गया, तीसरा हो गया ब्रह्म मुहूर्त। तो ब्रह्मा आचरण, ब्रह्मा जी के द्वारा दिया हुआ ज्ञान, कब, ब्रह्म मुहूर्त के समय, चाहे उसको संगम गिन लो चाहे दिन का अमृत वेला गिन लो। एक और भी चीज कही जाती है, जो भी ब्रह्मा जी के साथ जोड़ी हुई है, दुनिया वाले उसको ब्रह्म भोज कहते हैं, आपने सुना है ना ब्रह्म भोज। तो ब्रह्म भोज वो समझते हैं कि भक्ति मार्ग में कोई विशेष दिन होता है, कोई विशेष मौका होता है, उस समय वो बहुत अच्छा पंडितों को बुलाते हैं, खिलाते हैं, गरीबों को भी बांट देते हैं, ब्रह्म भोज। लेकिन ये निकला कहाँ से है, ये निकला है ब्रह्मा भोजन से, है ना। बाबा कहता है कि ब्रह्मा भोजन जो कि बाबा की याद में खाया जाता है, बाबा की याद में बनाया जाता है, जिसका सबसे इम्पोर्टेंट मसाला होता है प्रेम, और तो मसाले और होते हैं, लेकिन लोग कहते हैं जो भी आता है कि आपका भोजन बहुत स्वादिष्ट है, यद्यपि उसमें दुनिया की चीजें नहीं होती, क्यों, कि उसके अंदर एक चीज होती है जिसको प्रेम कहते हैं। तो बाबा कहते हैं वो ब्रह्मा भोजन करने का अधिकार या मौका वो सिर्फ ब्राह्मणों को मिलता है, देवता भी उस भोजन को तरसते हैं ऐसा कहा जाता है। तो इसलिए आप देखिए कि वो ब्रह्मा भोजन उसको उन्होंने ब्रह्म भोज कर दिया। तो हम ब्राह्मणों को जिनको रूहानी ब्राह्मण हैं, सच्चे ब्राह्मण हैं, अलौकिक ब्राह्मण हैं, उनको ये चारों चीजें नसीब में हैं। समझो कि ड्रामा अनुसार उनका पार्ट है, तो कितने भाग्यशाली हैं कि दुनिया दूसरी तरफ नीचे गिर रही है और ये मर्यादाओं को पालन करने के लिए चार बेसिक बातें हैं, ब्रह्मा आचरण, ब्रह्मा के द्वारा मिला हुआ ज्ञान और ब्रह्मा के द्वारा बताए हुए समय पर उस ज्ञान को धारण करना। डॉक्टर भी कहते हैं ये गोली सुबह खानी है खाली पेट, किसी गोली के लिए कहते हैं भोजन के बाद खानी है नहीं तो नुकसान करेगी, तो वो समय भी बाबा ने निश्चित किया हुआ है। और हमारा खाना पीना, और ये तो हम जानते हैं कि भोजन सिर्फ पेट का नहीं होता, भोजन कानों का भी होता है। हम सब जानते हैं ना कानों का भोजन क्या है, जिसके लिए बाबा ने कानों में उंगली डालने को कहा हुआ है, हियर नो ईवल। आंखों का भी भोजन होता है, सी नो ईवल। और मुख का भी होता है, खुद नहीं करते दूसरे को करवा देते हैं। इसलिए बाबा कहता है ये सारे ही भोजन ब्रह्माचर्य के अंदर आते हैं। ये हमारी सिंपल मर्यादाएं हो गई। अब आगे चलो, अब बाबा कहते हैं कि जो मर्यादाएं पालन करते हैं उनकी क्या निशानी है, क्योंकि हमें पता होना चाहिए। हम समझे हम मर्यादा पालन कर रहे हैं, क्योंकि बाबा ने हर कंडीशन के लिए मर्यादा बताई हुई है कि बच्चों को कोई मुश्किल ना हो। इसलिए अनेक बच्चे हैं, अनेक उनके कर्म भोग हैं, अनेक उनके हिसाब किताब हैं, अनेक उनके हालात हैं, कंडीशंस हैं, सरकमस्टांस हैं। तो बाबा ने हर एक के सरकमस्टांस के मुताबिक बताया हुआ। हॉस्पिटल में भी जाओ तो बच्चों का डिपार्टमेंट अलग होता है, बच्चों को अलग तरह की दवाई पानी मिला के डल्यूट करके दी जाती है, दूसरों का डिपार्टमेंट अलग होता है, कोई शुगर पेशेंट होता है, कोई हार्ट पेशेंट, हर एक का अलग अलग होता है। तो बाबा कहते हैं मैं भी ऐसे ही करता हूं। अब हमारे ज्ञान में भी शुगर पेशेंट है, वो क्या है, बाबा कहते हैं मीठे मीठे बच्चे। अब मीठा उनको स्वीकार ही नहीं है बेचारों को, कहते हैं नो आई एम डायबिटिक, मुझे मीठा फील ही नहीं होता। क्या कहा जाएगा कि बाबा कह रहा है मीठे मीठे, लेकिन भगवान भी मिठाई दे रहा तो खाने को मजबूर है, तो क्या करेंगे। हार्ट पेशेंट भी होते हैं, बाबा कहता है बच्चे खूब अपने दिल को बड़ा रखो, फ्राक बड़ा दिल रखो, वो बेचारे इतने से दिल वाले होते हैं, हैं? दिल वाले के बच्चे दिल छोटा। इसलिए बाबा कहता है कि मैंने हर बच्चे के अनुसार, क्योंकि सारे ही बच्चे हैं तो उनको अपनी अपनी संपूर्णता को पाना है, इसलिए बहुत आसान करके बाबा ने ये तो गारंटी की हुई है कि जितने भी हम हैं हर एक की बाबा ने गारंटी ली हुई है कि इन आपको मैं संपूर्ण करके ही छोड़ूंगा। आप आनाकानी भी करोगे, जैसे स्कूल के बच्चे को स्कूल भेजा जाता है तो बच्चा आनाकानी करता है, लेकिन माता पिता उसको कुछ ना कुछ करके भेज देते हैं। तो बाबा कहता है कि आनाकानी हम जानते हैं, जिसको बाबा बहानेबाजी कहता है, फिर भी बाबा हमको तैयार कर देता है, स्कूल में भेज देता है। और बाबा का ये गारंटी है, अरे जो बाबा के यज्ञ में एडमिट भी नहीं हुए, पेड़ पौधे प्रकृति पशु पंछी वो सारे सतोगुणी बन जाते हैं, तो आप कम से कम आके बैठते तो हो, हाजिरी के भी नंबर हैं, हाजिरी के बहुत नंबर होते हैं, क्योंकि मैं हाजिर हो गया तो मुझे देखकर 10 और हाजिर हो जाएंगे, और अगर मैं गैर हाजिर हो गया तो 10 और गैर हाजिर हो जाएंगे। इसलिए बाबा कहता है हमारी ये भी मर्यादा है कि हमने अकेले को नहीं देखना। हमारा बाबा का ज्ञान ऐसा है कि बाबा कहता है समय थोड़ा है और कमाई अति है, क्योंकि बाबा मुरलियों में कहते हैं एक बिंदी लगाओ कमाई हो गई, दूसरी लगाओ कमाई हो गई। अब बिंदी तो बच्चा भी लगा लेता है, एक का दस, दस का सौ, सौ का हजार, हजार का दस हजार, और आगे जाके तो अनगिनत पदम के बाद क्या गिनेंगे। इसलिए बाबा कहता है सतयुग में अकाउंटिंग भी नहीं होती, काउंटिंग भी नहीं होती, सीधा ही ढेर का ढेर जो कि अथाह है। तो इसलिए उस अथाह के लिए बाबा ने तरीका बताया हुआ, और ऐसे ऐसे हमारे को व्यापार बताए हुए हैं, बिजनेस, जो आप और दुनिया को कोई जानता ही नहीं है। दुनिया में तो घाटा वायदा होता है, किसी को 400 गुना फायदा हो जाएगा, हजार गुना, यहाँ तो मामला ही दूसरा है। क्योंकि हमारा बाबा कहते हैं जितना कमाओ फटाफट बांट दो, ताकि बाकी भी आपकी तरफ से कमाएं, उसका भी आपको इस बाबा का काम अच्छा हो जाएगा। अपने पास नहीं रखो, अपने पास रखेंगे तो केवल आपका। इसलिए बाबा ने स्लोगन दिया हुआ है जो सो कल्याणकारी हैं वो त्रेता में जाएंगे, जो विश्व कल्याणकारी हैं वो सतयुग में जाएंगे। अर्थात जो अपना ही अपना सोचेंगे और अंत तक अपने ही तीर मारते रहेंगे तो उनको पता है उनको तीर कमान मिल जाएगा, और जो बांट बूंद के चैन की बंसी बजाएंगे आराम से, उनकी कमाई हो रही है तो वो बाबा कहता है सतयुग में जाएंगे। तो हमको क्या करना है, जो मिला बांट दिया, और हमारा माल ऐसा है कि आपका घटेगा नहीं। दुनिया में ऐसी चीजें हैं जो आपकी घटेंगी नहीं। उदाहरण के तौर पे जब भी आजकल रस्म है, जब भी कोई ओपनिंग सेरेमनी करता है, श्री गणेश करता है, तो क्या करता है, मोमबत्ती या दीपक जलाते हैं, ये सिस्टम है। अब एक दीपक से दूसरा जला तो पहले की लाइट कम हो गई क्या, नहीं। तीसरा जला सौ जला लो। इसलिए बाबा कहता है जिसको ये फॉर्मूला पता वो दिवाली मना रहा है, क्यों कि आपने दीपक जला दी, आपको एक मोमबत्ती मिल गया, फटाफट फटाफट सबके दीपक जला दो। यहां अगर सारे हॉल में हर एक को कैंडल दे दिया जाए और लाइट बंद कर दी जाए और सब देखें तो क्या लगेगा, 25,000 दीपक जल रहे हैं, तो हो गई दिवाली कि नहीं। ये तो स्थूल है, परंतु ये सूक्ष्म वाली। बाबा कहता है कि सतयुग में तो सृष्टि पैदा ही दृष्टि से होती है, तो आप किसी को दृष्टि दो उसकी बुद्धि का ताला खुल जाए, है ना। आजकल ताले खोलने के भी तरीके चाबी चुबी वाले गए, आजकल क्या है सारा कंप्यूटर सिस्टम है, आपने नंबर किया खुल गया। तो बाबा कहता है इसी तरह ये बुद्धियों के लॉक, जिसको गॉडरेज का लॉक बाबा कहता है कि वो लगा हुआ है अच्छी तरह, तो आपने उनका ताला खोला तो आपका तो खुला ही रहा ना, और भी खुल गए। तो पहला सब्जेक्ट हमारा क्या है, ज्ञान बांटो और आपका बढ़ेगा। अच्छा, नंबर टू क्या है, योग। अब बाबा कहता है कि अगर आप किसी को ऊपर वाले से योग लगाना सिखा दो, कोई कह दे पानी नहीं मिल रहा आपको, वहां जाओ वहां नदी बह रही है, तो आपका तो कोई नुकसान नहीं है, वो नदी से ही लेगा, आपका थोड़ी हिस्सा ले जाएगा। इसलिए बाबा कहता है किसी को रास्ता बताना ये बहुत इम्पोर्टेंट है, और रास्ता बताना कोई उसके ऊपर एहसान नहीं है, अपना ही फायदा है। क्योंकि इस ज्ञान का नियम है कि कोई भी चीज दुनिया की अपने लिए नहीं बनी, दुनिया में कोई ऐसी वस्तु नहीं है जो अपने लिए बनी हो, ये हमें नोट रखना है। ये बल्ब रोशनी दे रहा है किसको, अपने को। ये सोफा आराम दे रहा है किसको, अपने को या आपको। कोई चीज देख लो आप दुनिया की, अपने लिए नहीं बनी। तो बाबा इसीलिए कहता है कि तुम योग लगाते हो दूसरे का भी लगवा दो। अच्छा, तीसरा है दैवी गुण। अब एक फूल है, दैवी गुण की कहते खुशबू होती है, एक फूल है उसकी आपने खुशबू ले ली तो फूल की घट गई क्या, आप सोचो, आप रोज गार्डन में जाते हो, जितने मर्जी नाक से प्राणायाम करने वाला सारी खुशबू ले ले, उसकी नहीं घटेगी। इसलिए बाबा कहते तीसरा बिजनेस आपका ये है कि दैवी गुणों से खुशबू फैलाओ, आपकी तो आपकी रहेगी। लोग बाहर का सेंट ढूंढते हैं, हमेशा खुशबूदार व्यक्ति अपना सेंट लगा के चलता है या सोचता है मैं तो बैड स्मेलिंग हूं, कहीं खुशबू मिल जाए तो मांगना हो जाता है। इसलिए तीसरा सब्जेक्ट भी बढ़िया है और चौथा तो है ही सेवा का। इसलिए आपका बिजनेस ऐसा है, करते जो आपका कुछ नहीं घटेगा, बढ़ेगा ही बढ़ेगा। तो बाबा तो व्यापारी है, हीरों का व्यापारी था, इसलिए बाबा ने उसको चुना कि अपना तो व्यापार सिंपल है, कर देते जाओ, इसलिए रखना मैंने घाटे में आना, फटाफट बांट दो। इसलिए बाबा कहते चारों सब्जेक्ट आपके ये मर्यादा है। अगर जैसे ब्रह्मा बाबा ने किया, रात को जाकर दिन को जाकर किसी को फायदा हो रहा हो तो क्या रात को सोएगा क्या बिजनेसमैन को? नहीं, उसको नींद ही नहीं आएगी। तो बाबा कहते दुनिया में भी व्यापारी होते हैं, शटर बंद कर रहे होते हैं, कोई कस्टमर आ जाता है, कोई कस्टमर आ जाता है कि जी अच्छा आप बंद कर रहे हैं, मैं कल आ जाऊंगा। नहीं 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 नहीं, अभी आओ। खाना खा रहे होते हैं, वो कहता जी आप भोजन कर रहे हो। नहीं नहीं नहीं, इधर आओ। तो इसलिए बाबा कहते ये तो बिजनेस बहुत बढ़िया है। तो करते करते एक बाबा, आप देखो सारी दुनिया के अंदर बाबा का ज्ञान हो गया कि नहीं हो गया? इसलिए ये हमारी मर्यादा है। तो इसलिए बाबा कहता है योग का दूसरा नाम है सहयोग। अगर आपने योग को मुश्किल समझा कि हम बैठ करके आसन करते हैं, वो इसलिए जरूरी है कि अटेंशन रहे। अदरवाइज आप कोई भी व्यक्ति सारा दिन तो योग में बैठ नहीं सकता ऐसे करके, उसको तो हठ योग कहा जाता है। तो नेचुरल योग जो है हमारा, हर वक्त नेचुरल योग तो लगा ही रहता है। लौकिक वालों का लौकिक में लगा रहता है, अलौकिक वालों का अलौकिक में लगा रहता है। बस हम अलौकिक रहे तो हमारा योग ही योग है। और योग की निशानी क्या है? सहयोग। अब सहयोग शब्द बहुत ईजी है, और अगर हम सहयोगी बन जाएं तो योगी बन जाएं। अब सहयोगी के लिए क्या है? एक तो हमें रेगुलर होना पड़ता है, एक एक्यूरेट होना पड़ता है। देवी देवता बिल्कुल एक्यूरेट होते हैं। अब देखो प्रकृति है, सूरज एक्यूरेट निकलता है। आपको ऐसी पुस्तकें मिल जाएंगी जो बताएंगी कि 100 साल के बाद आज के दिन सूरज कितने बजे निकलेगा, वो बना के देते हैं। एक्यूरेट निकलता है क्योंकि सूरज जो है परफेक्ट है। सूरज की क्या खूबी है? सूरज देता ही देता है, वो डायमंड की तरह है, रोशनी देगा, गर्मी देगा, कभी लेगा नहीं, उसका काम ही देना है, इसलिए वो परफेक्ट है। उसकी सारी मूवमेंट एक्यूरेट है। सतयुग में हमारा भी एक्यूरेट होता है ना, बेटाइम मृत्यु हो सकती है, मृत्यु का तो नाम ही नहीं। अभी गीत बज रहा था फरिश्ते, अब फरिश्ते का जन्म मरण होता ही नहीं। आप देखेंगे देवताओं का फिर भी होगा कि शरीर लिया शरीर छोड़ा, मरना नहीं कहते वहां, लेकिन फरिश्ते का कभी सुना है? फरिश्ता जन्म ले लिया और मर गया? नहीं। और संगम पर आप फरिश्ते हैं, जीवन मृत्यु से परे, क्योंकि रूहानी है। इसलिए बाबा कहता है कि परफेक्ट जो है उसका एक्यूरेट होता है। तो अगर हम यहां परफेक्ट बन जाएं, उसमें थोड़ा रेगुलरिटी चाहिए कि अगर अमृत वेला इतने बजे है तो हमें अमृत वेले ही करना है। फिर अमृत वेले में योग लगाना है तो ज्ञान की नहीं सोचनी, सेवा की नहीं सोचनी, दिनचर्या नहीं सोचनी, योग मैंने योग। जो मुरली सुननी है तो मुरली सुननी अच्छी तरह। जो थोड़ा आगे पीछे करते हैं योग के समय मुरली के ख्याल, मुरली के समय योग के ख्याल। बाबा कहता है योग बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, योग सबसे इंपॉर्टेंट। भाई ख्याल ही कर रहे हो ना। अच्छा, रात को सोने के समय नींद नहीं आनी, जागने के समय आंख नहीं खुलनी, ये तो आज की दुनिया है। जाग वो भी जाते हैं, सो वो भी जाते हैं, पर मजबूरी से। यहाँ मजबूरी नहीं है, मोहब्बत है। तो मोहब्बत का मतलब क्या हुआ? मोहब्बत का मतलब होता है सहयोग। और सहयोग का है कि कोई भी बाबा की बताई हुई चीज हमने एक्यूरेट करनी। अब एग्जैक्टली एक्यूरेट कितने करते हैं, 33 करोड़, एक तरफ 33 करोड़ और एक तरफ 9 लाख, आप गिन लो। सारे वही ज्ञान ले रहे हैं, सारे वही योग लगा रहे हैं, सारे वही सेवा कर रहे हैं, क्यों, फर्क क्या है? वो एक्यूरेट है, जिस वक्त जो काम करना उस वक्त करना। तो फिर सतयुग में प्रकृति भी जिस वक्त जो करेगी उसी वक्त करेगी, आपका जन्म भी एक्यूरेट होगा, आपका सब कुछ एक्यूरेट होगा, कोई जरा भी फर्क नहीं पड़ सकता क्योंकि कंप्लीट है। इसलिए बाबा कहता है कि रेगुलरिटी एक्यूरेट बनाती है। अगर मैं समझूं मुझे एक्यूरेसी का पता है, लास्ट मोमेंट आएगा ना तो मैं एक्यूरेट हो जाऊंगा, वो हो नहीं सकता। धीरे धीरे अभ्यास करते करते लोग कहते हैं कि मिट्टी के घड़े से भी कुएं का पत्थर में दबाव आ जाता है, वो मिट्टी का है, ये पत्थर का है, लेकिन डालते डालते उसका असर आ जाता है। तो इसलिए हमारी रेगुलरिटी बहुत इम्पोर्टेंट है। और अगर मैं रेगुलर रहूंगा, मेरे साथ वाले 4 भी रेगुलर रहेंगे, अगर मैंने जरा सी डील दे दी वो भी डील में आ जाएंगे, ये नियम है। इसलिए अपने ऊपर अटेंशन देना जरूरी है। तो इसलिए बाबा कहता है आसान काम है, हमारे काम 3 है। एक काम तो क्या है, बाबा, क्योंकि बाबा के बगैर हमारी जड़ें बीज के साथ कनेक्टेड नहीं है। हम सब जड़ें हैं और दुनिया के तो पत्ते हैं, टहनियां हैं, हम सब जड़ें हैं, क्योंकि संगम पर हैं, धरती के नीचे हैं। जड़ कभी खूबसूरत नहीं होती, जड़ अंदर सेफ रहती है, जड़ सदा गीली रहती है। और जड़ का केवल काम क्या होता है, नीचे का माल ऊपर पहुंचाना बस, और खुद गीली रहती है क्योंकि पहुंचा रही है, उसका पहुंचाना ही काम है और सदा गीली रहती है, लेकिन शोषा नहीं होता जड़ में। इसलिए जैसे बस वाला कहता है हाथ बाहर नहीं निकालो टूट जाएगा, तो बाबा भी कहता है जड़ में रहोगे सेफ रहोगे, मेरे साथ कनेक्टेड। तो पहला काम हमारा क्या है, बाबा से कनेक्टेड। अगर हम बाबा से जब तक कनेक्टेड है हमें रस आ रहा है, हमारे प्राण भी सेफ हैं, हमारा हर चीज सेफ है, चिंता की जरूरत ही नहीं, निश्चिंत है। दूसरा काम क्या है कि बाबा का संदेश दूसरों को देना, क्योंकि ये भी इतना ही इम्पोर्टेंट है। अगर हम बाबा का संदेश नहीं देते कुछ और दे रहे हैं, सीधी बात है, क्योंकि सारा टाइम हमारा दिन भी है रात भी है। बाबा कहते और ना से तो मनसा से ही देते रहो, आखिर हमको जो बढ़िया शरीर मिलने हैं हमें कमाने पड़ेंगे ना कि ऐसे मिल जाएंगे कि सतयुग आया हर एक को बढ़िया शरीर, नहीं, वो भी कई तरह के शरीर हैं। सतयुग का पहला शरीर और दूसरे में फर्क है, और सतयुग के शरीरों में भी फर्क है, कहाँ प्रजा का शरीर, कहाँ बीच बीच में शरीर, कहाँ महाराजा का, कितना फर्क है, जरा जरा फर्क है। तो बाबा कहता वो भी आपको तत्व शुद्ध करने हैं, पैसा नहीं लगेगा पर तत्व तो शुद्ध करने हैं ना। ये सारे काम दूसरा नंबर है। और तीसरा हमारा टेस्ट है, अभी भी गीत बज रहा था हर हाल में खुश रहो, तो टेस्ट ये है एक बाबा को याद करना, एक बाबा का संदेश देना और एक रस रहना, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। दुनिया भी दुख में दुखी हो गई, सुख में सुखी हो गई, वो तो दुनिया भी करती है लहरों के साथ डामाडोल, लेकिन अति गर्मी पड़ रही हो और आपके मुंह से ना निकले बड़ी गर्मी है, क्योंकि आपने कहा बड़ी गर्मी है तो 4 और को भी फील हो जाएगा बड़ी गर्मी है। अगर आप उसमें शांत हैं और सोच रहे हैं कि मैं एक रस रहना है तो आपकी जीत हो जाएगी। अब बाबा कहता है एक दो बार कोई चीज जीत लो आपको वो पेपर दोबारा नहीं आएगा। एक और वंडरफुल बात यह है, आप एक पेपर को एक बार ही पास कर लोगे दोबारा नहीं आएगा, चाहे आप 3rd डिवीजन में ही पास कर लो, पर पास कर लो। मान लो मैं 6ठी का इम्तिहान देता हूं और 6ठी में मैं 3rd डिवीजन में पास हो जाता हूं, मुझे छठी की परीक्षा दोबारा नहीं आएगी जिंदगी में, फर्स्ट में हो जाऊं तो और भी अच्छा। अब सातवीं का आ गया, अब सातवीं की परीक्षा मैं छठी की पढ़ाई से तो पास नहीं कर सकता, छठी में मैं फर्स्ट भी आ जाऊं लेकिन मैं सोचूं कि सातवीं की परीक्षा इस पढ़ाई से हो जाएगी, होने वाली नहीं। तो बाबा कहते हैं आपकी ये परीक्षाएं हैं और परीक्षा मैं उसी को भेजता हूं जिसके पास हिम्मत हो परीक्षा को पास करने की, जिसके पास हिम्मत नहीं उसको कम भेजता है। तो कई ये सोचने लग जाते हैं मेरे ऊपर ही सारे बोझ आ रहे हैं, मेरी परीक्षा हो रही है, बाकी तो मौज कर रहे हैं। जो बच्चा पढ़ना ही नहीं, नाम मात्र नाम लिखाया हुआ है, टीचर को भी पता और उसको खुद भी पता है मेरा क्या होने वाला है तो क्या होगा। एक व्यक्ति सुबह सुबह अपने बच्चे को जोर से पीट रहा था, तो एक व्यक्ति सैर कर रहा था। पहले उसने सोचा आजकल के जमाने में इसी में दखल देना ठीक नहीं, पर उसने देखा बहुत बेरहमी से पीट रहा है, तो उसने कहा भाई इस बेचारे को क्यों सुबह सुबह पीट रहे हो। कहता है जी कल इसका रिजल्ट आना और कल मैं आउट ऑफ स्टेशन हूं। अच्छा, अब आप ये भी देख लीजिए कि बाबा ने थोड़ा नीचे भी बताया हुआ है कि एक तरफ 21 जन्मों की कमाई, कलप कलप की कमाई और सस्ते में, और दूसरी तरफ बाबा कहता है अगर अगर गुरु की निंदा कर दी सतगुरु की तो 100 गुना फायदा भी, 100 गुना सजा भी, 100 गुना फायदा पदम गुना, सजा नुकसान भी पदम गुना। अगर बाबा कहता है बिंदी लगाओ आपकी कमाई होगी, आपने दिन में 1000 बिंदियां लगा ली तो आपने समझा बहुत कमाई कर ली, दुआएं कितनी और भी तो लग सकती थी ना। इसलिए बाबा ने यह भी कह रखा है कि सजा अनेक गुना और फिर उसका कलप कलप की हो जाएगी, तो ये हमको ध्यान भी रखना है। नहीं तो क्या होता है हम फायदा गिन लेते हैं, ये मैंने किया इसका मुझे फल मिलना चाहिए, वो तो मिलेगा ही, जो नहीं किया। अब मान लो क्रोध है, अब बाबा का बच्चा क्रोध करे कितना भी ज्ञानी हो लेकिन कारण भी कुछ बन जाए और वो क्रोध कर दे तो बाबा का नाम रोशन होगा? लोग कहेंगे जी ये भी क्रोध करते हैं, दुनिया वाले भी क्रोध करते हैं, फर्क क्या हुआ। इसलिए ये भी हमको ध्यान रखना, हमको बहुत सीर अंदर ही अंदर अटेंशन रखना है। इसलिए जानकी दादी जी ने कहा था कि 3 शक्तियां संगम युग पर हमें शक्तियां हैं और अभी ही शक्तियां हैं, उसके बाद हमारी शक्तियां गोल हो जाएंगी, गुम हो जाएंगी। सतयुग में जो आपके क्वालिफिकेशन है उसमें शक्तियां हैं, सर्वगुण संपन्न जो कि संपूर्ण निर्विकारी बने, मर्यादा पुरुषोत्तम 16 कला संपूर्ण, शक्ति का नाम नहीं है, सर्वगुण संपन्न है, सर्वशक्ति संपन्न नहीं है, क्योंकि शक्तियों का प्रयोग यही होता है। एक बारी फल उगया तो फल पक गया, उसको आप ताकत देने की कोशिश करेंगे तब भी नहीं। इसलिए बाबा कहता है बोने का समय अलग है, पालना का अलग है और खत्म होने का अलग है। तो ये संगम खत्म हुआ, मान लो मैंने अभी शरीर छोड़ा मेरे लिए तो खत्म हो गया छुट्टी। इसलिए बाबा कहता हम सबको ये भी खुशकिस्मती है कि हम आज जिंदा हैं। इस वक्त हम संगम युग में डायमंड हॉल में सांस ले रहे हैं, ये भी खुशकिस्मती है। जरा ताली बजाइए, क्योंकि ये हमारा ऐड हो रहा है, ये भी मौका है। और भाग्यशाली इसलिए है कि कलप कलप हमारा मौका फिक्स है, आज का दिन तो फिक्स है कि नहीं है कि हम यहां बैठे। ओम शांति। जब बाबा अव्यक्त हुए थे तो बाबा ने हमको एक मर्यादा जिसमें सब समाया हुआ है वो बताई थी, आप सबको याद है, निराकारी निर्विकारी और निरहंकारी। ये हमारे जीवन के लिए एक अच्छा मंत्र है, हम इस को धारणा में रहेंगे तो हमारा ब्राह्मण लाइफ ऑटोमेटिकली बाबा के लास्ट वचनों को प्रैक्टिकल में लाने के लिए और अपना जीवन बनाने के लिए बहुत अच्छा है। ओम शांति।
यही है तमन्ना, बने बाबा तुमका,
यही है तमन्ना, बने बाबा तुमका, चले साथ घर को घड़ी ऐसी आए, हमें तो हमें